ख्यपार्षदसेवन सख्य दौत्य सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तव तवन प्रणामान् वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपते चरणारविन्दे भक्तिं करोति नृपते चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपते चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपते करुणागोविन्दे सारथ्य सारथी के पद की स्वीकृति पार्षद राजसूय यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति सेवन भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना सख्य भगवान को मित्र के रूप में सोचना दौत्य दूत पद को स्वीकारना वीर आसन रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले की पद की स्वीकृति अनुगमन चरण चिन्हों पर चलना स्तवन प्रार्थना करना प्रणामान प्रणाम करते हुए स्निग्धेशु जो लोग भगवान के इच्छा के प्रति विनम्र हैं उनको विनीत पांडुषु पांडवों में जगत विश्व प्रणतिम जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए उसको च तथा विष्णो विष्णु की भक्तिम भक्ति करोति करता है नृपति ही राजा चरणारविंदे भगवान भगवान के चरण कमलों पर। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है, उन्होंने अपनी अहितु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों को उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार की सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने के से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है थे। इस प्रकार भगवान ने पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य प्रतिदान का महत्व समझ सकते और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें ठीक से समझता है वह भगवत धाम जाने की भागी बन जाता है। पांडवगण भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप से भगवान की कृपा के भाजन बन सकते थे। हरे कृष्ण। कल हमने चर्चा किया किस प्रकार जब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों कुंती महारानी, द्रौपदी और सुभद्रा के साथ प्रस्थान किए हिमालय की ओर राज्य को त्याग कर, तो उन्होंने परीक्षित महाराज को पूरे विश्व का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। परीक्षित महाराज द्विजवर्यों के नेतृत्व में उनके आज्ञानुसार संपूर्ण विश्व के जो राज्य है उसको अधिपति के रूप में संभाल रहे थे। और तब एक दिन उन्होंने, उनको पता चला कि इस तरह से उन्होंने देखा कि शूद्र एक जो है राजा के रूप धारण करके गाय पे प्रहार कर रहा है। तो ये बात जब शौनकादि ऋषि ने सुना तो उनका प्रश्न ये था कि महाराज परीक्षित ने उन्हें मार क्यों नहीं डाला, सिर्फ सजा क्यों दिया। और दूसरा प्रश्न था कि राजा जैसा व्यक्ति गाय पर कैसा प्रहार कर सकता है, सोच भी हम नहीं सकते। तो सुत गोस्वामी जी, कृपया इसके बारे में विवरण कीजिए, अगर ये कृष्ण कथा से संबंधित हो तो। कृष्ण कथा से संबंधित नहीं हो तो हमें यह सब नहीं सुनना, हमें लेना देना नहीं। तो अगर ये प्रसंग कृष्ण कथा से संबंधित है तो हमें सुनाइए, क्योंकि कहते हैं मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया हरियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोकर तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं, तो इस चीजों में हमको इच्छा नहीं है। अगर ये कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो हमें इसे कुछ लेना देना नहीं, पर अगर ये कृष्ण कथा से संबंधित है तो कृपया विवरण विवरित रूप से बताइए, विवरण कीजिए कि महाराज परीक्षित ने ऐसा क्यों व्यवहार किया, उनको सिर्फ केवल सजा क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया, जो मारने मृत्यु दंड देने योग्य है, और फिर वो राजा क्यों मार रहा था गाय को। तो अब सुत गोस्वामी यहां उसके उत्तर में कहते हैं, सुत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वस कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुत शौंडिराददे। सुत गोस्वामी ने कहा जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों का प्रवेश करते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। महाराज परीक्षित अपने राजधानी में राज्य कर रहे थे पूरे विश्व का, पर उनका साम्राज्य का निर्माण ऐसा था, उनका राज्य ऐसा उन्होंने बनाया था कि पूरे विश्व में कहीं भी कुछ होता था तुरंत उन्हें पता लगता था। ये उनकी कला थी, ये उनकी निपुणता थी कि एक जगह बैठे क्या हो रहा है सब पता चलते। जैसे प्रभु रामचंद्र भी एक जगह बैठे थे पर उनको पता मिलता था लोग क्या सोच रहे मेरे बारे में, क्या उनका मत है, क्या उनका सोच विचार है कैसा, और तुरंत उसके अनुसार वो कार्य करते थे। क्या सही सम्मान है कि जो होना चाहिए, कहीं मैं चूक रहा हूं मेरे कर्तव्य में, क्या वो चूक रहे हैं अपने कर्तव्य में जिसको मुझे ठीक करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई भी प्रतिनिधित्व करता है किसी का, गुरु न सस्यात् विदुर न सस्यात् पिता न सस्यात् जनि न सस्यात् दैवम न सस्यात् न पतिम न सस्यात् नमो चेतत् समुपेत मृत्युम्। भगवान ही सब कुछ है, तो वे माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम। एक्चुअली भगवान ही हमारे माता पिता, हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं। तो कोई भी अगर इस पदवी का स्वीकार करता है, माता या पिता या गुरु या देवता, वो अगर भगवान से स्वतंत्र कुछ कार्य करता है तो वो प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं कर रहा है। जैसे जब बलि महाराज ने देखा कि शुक्राचार्य गुरु हैं पर मुझे कह रहे हैं कि विष्णु की शरण मत जा, तो ये गुरु योग्य नहीं है, गुरु बनने योग्य नहीं है। जब भरत ने देखा कि माता कैकेयी कह रही है कि राम को हटा दो और तुम राज पर बैठ जाओ, तो बोले ये माता माता नहीं है। जब प्रहलाद ने देखा कि हिरण्यकशिपु भगवान के हरि के विरुद्ध है, तो बोले ये पिता पिता नहीं है। जब विभीषण ने देखा कि रावण राम की शरण जाने से मना कर रहा है, तो बोले ये भाई भाई नहीं है। तो जो भी एक व्यक्ति दूसरे के संबंध में कोई जिम्मेदारी लेता है तो हम भगवान के प्रतिनिधि हैं बस। तो प्रतिनिधित्व करना यह राजा का कर्तव्य है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे। भगवान क्षत्रिय राजा के रूप में आते, प्रभु रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण जब राजा के रूप में आते हैं तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय तिरस्कृताम धर्म संस्थापनाथ। तो राजा का कर्तव्य यही है, अगर आप भगवान का प्रतिनिधि है तो परित्राणाय साधुनाम, जो साधु व्यक्ति उनकी रक्षा होनी चाहिए, विनाशाय तिरस्कृताम जो धर्म के विरुद्ध है उनको सजा देना ही चाहिए, विनाश करना ही चाहिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना होनी चाहिए, कहीं भी अधर्म नहीं। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा द्विजवर्य शिक्षया, द्विजवर्यों के नेतृत्व में उन्होंने ऐसा राज्य संभाला था कि कहीं भी कुछ भगवान के इच्छा के विरुद्ध कहीं चीज चल रहा है तो तुरंत उसके प्रति वो उसको हटाने के लिए कार्यरत होने के लिए तैयार थे। तो कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्ती थे, अपने जहां चक्रवर्ती पूरे सम्राट थे, कलिम प्रविष्टम उन्हें समझ में आ गया कि कली का प्रवेश हो रहा है मेरे राज्य में कहीं। तो निशम्य जैसा उन्होंने सुना तो कहते हैं वार्ताम अन अति प्रिय ततः, उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे होते हुए मेरे राज्य में कली प्रवेश कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। शरासनम संयुष्ट शौंडिराद दे, शरासनम तुरंत उन्होंने धनुष लिया, बाण लिया और रथ पर बैठकर तैयार हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उससे पहले कितने कि कली का लक्षण क्या है, कलियुग का लक्षण क्या है, मांसाहार नशा व्यभिचार जुआ, सत्यम शौचम तपह दया, ये चार खंभे पे धर्म खड़ा हुआ है, सत्य शुद्धता तपस्या और दया, और ये चार चीजों अधर्म के जो चीज हैं ये नष्ट कर देते हैं। तो कली का मतलब है झगड़ा, और ये जहां ये चार चीज होता है वहां निश्चित रूप से झगड़ा होता है, सारे झगड़ों का मूल कारण यही है। और इसीलिए कई हद तक हम देखते हैं कि ये जो चार चीज जब व्यक्ति उसको इससे छूट जाता है तो ये जो एकदम लो क्लास झगड़ा जो होता है हम नहीं देखते ऐसे समाज में जहां ऐसे लोग रहते हैं जो ये चार नियमों का पालन करते हैं स्थूल रूप से, ये मूल कारण है। और इसका मतलब यह है कि परीक्षित महाराज के समय तक 5000 साल पहले पूरे समाज में ये नामोनिशान नहीं था इन चीजों का, परीक्षित महाराज के समय तक। और जब परीक्षित महाराज ने सुना उनको अच्छा नहीं लगा, पर उनका व्हाट वाज हिज रिस्पांस, उनका रिस्पांस क्या था, तुरंत उन्होंने उत्सुक थे, बड़े उत्सुक हो गए लड़ाई लड़ने में, उनको लड़ाई लड़ने की इच्छा, एक वैष्णव को लड़ने की इच्छा नहीं है पर उत्सुक हो गए क्षत्रिय के रूप में। क्यों, क्योंकि जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कोई स्पोर्ट्समैन है उसको एक मेजर स्पोर्ट्स इवेंट आ गया, स्टेट लेवल कंपटीशन, तो उसको उत्साह होता है, वाह अभी मेरा जो इतना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं स्पोर्ट्स का अभी दिखाने का एक अच्छा मौका मिल गया तो खुश होता है वो, कोई बड़ा इवेंट आ गया तो बहुत खुश होता है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल खुश होता है। से प्रचारक है चुपचाप बैठा हुआ है, कोई आके बोलता प्रभु जी एक प्रवचन देना है, देख आप बोलो कहां देना है, नहीं प्रभु जी 3000 लोग है, 3000 और भी अच्छा है, बहुत गुड, उसको उत्साह है, वही तो है उसका जीवन। तो परीक्षित महाराज बहुत आनंद हुआ, बोले चलो खुश हुए, बोले चलो अभी थोड़ा हाथ साफ कर लेंगे, बहुत समय से झगड़ा नहीं, सब ठीक ठाक है, पर क्षत्रिय है, देखता है कि अगर अधर्म हो रहा है तो ठीक है। तो बड़े उत्साहपूर्वक उन्होंने तैयार किया। फिर प्रभुपाद अच्छी तरह से समझाते हैं, महाराज परीक्षित कह सकते थे अरे कलयुग का तो समय आ गया है, तो कलयुग तो प्रवेश करेगा ही, मैं फालतू में क्यों लड़ू, क्यों समय और शक्ति बर्बाद करूं, कली तो आने ही वाला है, तो भगवान ने ही छोड़ दिया है कि द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा ही, दुर्भाग्यवश मैं उस समय में आया हूं जब कली प्रवेश करने वाला है, तो वो अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा, क्यों फालतू में झगड़ा है कि नहीं, कोई बता सकता है ऐसा? कली अपना काम कर रहा है, भगवान ने भेजा उसको, मैं अपना काम करूंगा, क्यों फालतू में झगड़ना, उसका तो आना है ही। तो हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि क्यों ऐसा, तो अगर कली आना ही था तो फिर क्यों झगड़ा करना है कली के विरुद्ध। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा कोई वाद करता है तो ये आलसपन है और बड़ा दुर्भाग्यशाली बुद्धि है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये कलयुग है तो कलयुग को बढ़ने दो ना, नहीं, वैयक्तिक रूप से और समाज में उसका जो परिणाम है उससे बचाने के लिए तुरंत हमको कुछ करना ही चाहिए। अभी आप बारिश का समय, बारिश आने दो, हम घर में बैठे रहेंगे, ऐसा होता है क्या? आप काम पे नहीं जाते? हमारा कर्तव्य जो हमको करना पड़ेगा, नित्यम भागवत से भागवत आना पड़ेगा, नहीं अभी बारिश है, आज बारिश हो गया ना, बारिश है तो छाता लो, और हम बोलेंगे नहीं अभी आज बारिश है तो आज भागवतम नहीं होगा, अरे ऐसा शेड बनाओ ताकि बारिश नहीं आए, इधर यहां बैठ के चलता रहना चाहिए, अपना काम चलना चाहिए। इसी तरह से कली आएगा अपना काम करने दो, पर अपना काम है दूसरों को कली के प्रभाव से बचाना, खुद बचना और जितना हो सके उतने लोगों को बचाना, एक ऐसा वैकुंठ जैसा वातावरण बनाने में कोशिश करना। प्रभुपाद कह सकते थे ठीक है वो पाश्चात्य देश में सब ऐसे गए गुजरे लोग हैं, वहां क्या फालतू जाके कहां, वो लोग तो सुधरने नहीं वाले, मैं बैठे रहूंगा ना वृंदावन में बस आराम से जप करके बैठे रहूंगा, क्यों अननेसेसरली चिंता लेने का। नहीं, भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैं जो कुछ भी करना है, और अगर प्रभुपाद जी ऐसे नहीं गए होते और ऐसे आलसपन और दुर्भाग्यशाली बुद्धि से प्रभावित होकर अगर एक प्रचारक ऐसे बैठ जाएगा तो क्या होगा। तो ये बहुत जरूरी है, एक सज्जन का लक्षण है ये। कोई अगर पूरा दारू पीकर बहुत बड़े बिल्डिंग के ऊपर भाग रहा है, जिस बिल्डिंग के चारों ओर क्या बोलते हैं वो फेंसिंग भी नहीं है और वो भाग रहा है, क्या बोले पागल है, गिरेगा, गिरने दो ना, हम क्या करेंगे। नहीं, अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि अरे मैं इसको बचा सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे बीच में आने से कुछ हो सकता है तो करना है। तो किया उन्होंने तुरंत। तो जिस तरह से बारिश के दिनों में बारिश आएगा, ये बारिश का सीजन है, बारिश आएगा, पर हमारा काम चलते रहना है, छाता लेके चलता रहना हमारा कार्य। तो इस तरह से भले कलयुग आ जाए पर फिर भी कलयुग में खुद इस कली के प्रभाव से बचना और दूसरों को बचाना, उससे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है। निश्चित रूप से ये चार लक्षण जो है, मांसाहार, नशा, जुआ और व्यभिचार जो है, सामाजिक जीवन में आएगा ही, ये कलयुग में बहुत ही बड़े पैमाने पे आएगा। पर एक सरकार का जो नेता है उसका कर्तव्य है कि कली के सारे लक्षणों से बचाने के लिए जो कुछ भी हो सके उतना प्रयास करना चाहिए, उसको चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। तो तुरंत महाराज परीक्षित ने तैयारी किया, और कैसे कैसे तैयारी की, बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में, एक एक श्लोक और एक एक शब्द भी आप उसको थोड़ा आस्वादन करेंगे भागवतम को, बहुत ही मधुर है, मीठा है। कहते हैं कैसे तैयार की, स्वलंकृतं श्याम तुरंगयोजितं रथे मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरा भृतो रथाश्च द्विपपत्युयुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। कहते हैं स्वलंकृतम, स्वअलंकृतम, सुअलंकृतम, बड़ा सुंदर से उन्होंने अपने रथ को सजाया। सुअलंकृतम कैसे? श्याम तुरंग योजितम, तुरंग, तुरंग मतलब घोड़े, श्याम, श्याम वर्ण के थे महाराज परीक्षित के घोड़े, जो थे काले थे एकदम जेट ब्लैक। उनके दादाजी अर्जुन के घोड़े कैसे थे? स्नो व्हाइट, पूरा विरुद्ध, जेट ब्लैक। परीक्षित महाराज के घोड़े एकदम काले थे। श्याम तुरंग योजितम, रथ को लगा के, रथे मृगेंद्र ध्वज, अर्जुन था, अर्जुन का दूसरा नाम है कपित ध्वज, क्योंकि अर्जुन का ध्वज जो था उसमें हनुमान जी का चिन्ह था, बलराम जी का ताल वृक्ष, ताल ध्वज, और जगन्नाथ जी का गरुड़ ध्वज। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब निकलता है देखते ताल ध्वज, गरुड़ ध्वज, हर एक के ध्वज। एक्चुअली वहां लड़ाइयों में दूर से पहचान जाते थे कौन आ रहा है उसके ध्वज देखकर। ध्वज जैसा हम, जैसा कोई बिल्डिंग को कैसे पहचानते, वो सरकार का बिल्डिंग है, क्यों? तिरंगा झंडा ऊपर, ध्वज। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग कैसा पता चलेगा? सब एक ही बिल्डिंग एक ही लगता है, पर ध्वज देख, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये मंदिर है, क्यों? क्योंकि वहां फड़फड़ा रहा है एक ध्वज। तो दूर से पता करना है तो आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड जैसा ध्वज, और हर एक का अपना अपना खास होता था ध्वज। और लड़ाई में सबसे पहले ध्वज उड़ा देना उसका, पास मतलब आइडेंटिटी खो गया, कौन है वो समझता नहीं, कोई मार दे उसको। सबसे पहले ध्वज उड़ाना, फिर सारथी को मारना, फिर रथ का चक्का तोड़ देना, वो खत्म उसका, फिर धनुष तोड़ देना, फिर रहा क्या, फिर उसको मार देना, एक 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 उसको, मतलब जैसा दांव डालते हैं ना कुश्ती में, पकड़ पकड़ के, बाद में अंतिम में एक आया दांव डाला तो बस लेट गया पूरा। तो ये तरीका था लड़ाई का, एकदम सिस्टमैटिक साइंटिफिक लड़ाई में भी वो बड़ा। तो इस तरह से स्वलंकृतम रथे मृगेंद्र ध्वजम आश्रित पुरात, तो अपने राजधानी से निकले वृत्तो, वृत्तो मतलब घिरे हुए। महाराज परीक्षित निकले, उनका बहुत ही सुअलंकृत रथ, काले घोड़े, मृगेंद्र ध्वज, मृगेंद्र यानी सिंह का, उनके ध्वज पर सिंह का एक क्या बोलते हैं सिंबल चिन्ह, मृगेंद्र ध्वज आश्रित पुरा, अपने पुर से निकले। कैसे? वृतो, महाराज परीक्षित का रथ निकला है, और चारों ओर क्या है उनके? चारों ओर रथ अश्व दीपपत्ति युक्तया, रथ, उसके चारों ओर रथ हैं, और रथ के चारों ओर घोड़े हैं, और घोड़े के चारों ओर हाथी है, और फिर स्वसेनया, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब सैनिक, पैदल चलने वाले सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी के ऊपर सैनिक, रथी, रथ के ऊपर सैनिक। ये ऐसा नहीं कि सब घोड़े कहीं घुस गए, कहीं ऐसा नहीं, बहुत सिस्टमैटिक होता था। जब एक महारथी जाता है ऐसा, उसके चारों ओर चार और रथ होते हैं, वो रथ जो है उस महारथी को का संरक्षण करते हैं, और रथ के पहियों को संरक्षण करने के लिए, क्योंकि पहिया अगर टूट गया तो रथ टूट गया, तो रथ के पहिए को संरक्षण करने के लिए घुड़सवार जाते हैं वहां, हाथी, हाथी, और हाथी को संरक्षण करने, जो हाथी पे सवार उसको संरक्षण करने के लिए घोड़े, और जो घुड़सवार व्यक्ति वो लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी चारों ओर सैनिक लोग पैदल। तो एकदम सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड और सुअलंकृतम, फर्स्ट क्लास। ये एक सभ्य समाज का लक्षण है। सभ्य समाज का लक्षण क्या है? हर एक चीज स्टाइल में करना, स्टाइल में मतलब प्रेम से, अच्छी तरह से, लड़ाई भी प्रेम से, एक सभ्य समाज का लक्षण है लड़ाई भी सभ्य तरीके से लड़ना। अरे सूर्यास्त हो गया अभी तुम मारना नहीं, इतना भी गुस्सा हुआ हो पकड़ में आ गया हो, अरे अच्छा मौका मिल गया, पर नहीं सूर्यास्त हो गया अभी बंद करो, तुम्हारे पास तलवार है मेरे पास नहीं है, तलवार फेंको या उसको तलवार दो। दिस इज कल्चर्ड वे, दिस इज कल्चर्ड सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड सोसाइटी, ऐसा नहीं लो क्लास। निश्चित रूप से घृणा है द्वेष है, पर लड़ने का भी एक तरीका है, पब्लिक में लड़ाई नहीं, बॉम्ब फेंक के नहीं भागने का, स्त्रियों को ब्राह्मणों को बच्चों को जो निवासी हैं शहर में उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, लड़ाई लड़ना है ना चलो उधर आ जाओ दोनों लड़ेंगे, हम दोनों के झगड़े में दूसरों को क्यों तकलीफ, वहां लड़ेंगे जिसको जिसको लड़ना है वो सब आ जाओ उधर, बूढ़े बूढ़े यहां से आराम से रहने देंगे उनको, सिर्फ न्यूज मिलेगा कौन जीता कौन हारा बस, उनको क्यों उतना तकलीफ उठाना लड़ाई करते वक्त भी, क्योंकि लड़ाई में क्या है कभी कभी क्या बोलते हैं रजोगुण में, जब रजोगुण से प्रवृत्त हो जाता है आदमी तो सोचता नहीं पागल हो जाता है आदमी। नूनम प्रवत्त कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीति आप्रणोति, पर एक सभ्य व्यक्ति जो है भले लड़ाई जैसी चीज भी एकदम सभ्य तरीके से सब तैयार होकर सज धज के एकदम फर्स्ट क्लास, तुम भी आ जाओ सामने खड़े हो जाओ, फिर ललकारेंगे पहले, ऐसा नहीं कि पीछे से जाके मार दिया, ललकारेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा वार्म अप, बोले आज तेरे को नरक में भेज दूंगा, आज यमराज आज श्रीगाल और सारे सियार तेरे ऊपर आज फर्स्ट क्लास फीस्ट करेंगे, आ तू ऐसा समझता, फिर वो उसको बढ़ाएगा। जैसे कभी कभी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मैं एक बार गया था कॉलेज में, तो वहां थोड़ा आधा घंटा तो वार्म अप होता है उनका, टक 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 टक, फिर ऐसा बैक हैंड फिर फोर हैंड टक 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 एकदम चलता रहता है फट 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 फट, आधा पौना घंटे के बाद थोड़ा वो लोग फिट हो जाते हैं, मतलब वार्म अप हो जाता है, चलो अभी जिसको प्रैक्टिस नहीं आधा घंटा थक ही जाएगा, बोलेगा अभी क्या अभी खत्म हो गया अभी रेस्ट ले, पर जो सही में चैंपियन है वो मतलब दो घंटा करने के बाद बोलता है अब आ जाओ बस तैयार हूं वार्म अप हो गया। दिस इज सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी में खाने का एक तरीका है, ऐसा नहीं कुछ भी खा लिया कभी भी खा लिया, प्रेम से सबको बैठाओ सबको खिलाओ ऐसा सब जगह रखना, और सुअलंकृतम बड़ा अच्छा सा सजा के, खाने से ज्यादा वो सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब उसको आराम से, अगर हड़बड़ी में है फास्ट फूड नहीं है, गाड़ी चला रहा वहां खड़ा करके सिग्नल आया वहां खा रहा है, इट इज अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। खाने का भी एक तरीका है, खाने का पूरा फायदा उठाना है तो ठंडे दिमाग में स्नान वान करके आराम से बैठो सब लगाओ, आधा पेट तो वहीं भर जाता है जब अनुकूल वातावरण हो मूड अच्छा हो, फिर इतना भी खाओ पचता है, तो सिविलाइज्ड सोसाइटी। आहार निद्रा सोने का भी एक तरीका है, कभी भी सो लिया नहीं, कब सोना है कितना सोना है कैसा सोना है, आहार निद्रा भाई मैथुनम च, सब मैथुन का भी एक तरीका है। जब दिति गई कश्यप मुनि के पास, मुझे बहुत काम वासना आ गया है चलो मुझे तृप्त करो, आप तुम्हारा पति है तुम्हारा कर्तव्य है, बोले कर्तव्य ठीक है पर अनुकूल समय नहीं तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। सुसंस्कृत समाज का लक्षण है कि जो कुछ भी आहार निद्रा भय में जो कुछ भी हम कार्य करते हैं उसका एक युक्त आहार युक्त विहार और युक्त कर्म से चेष्ट सा युक्त मतलब तरीका होता है। सिविलाइज्ड सोसाइटी मीन्स कोई भी कार्य इस तरीके से करना, सूक्ष्म ये सब सूक्ष्म चीजें हैं, और यही एक वैष्णव आचार हमको सिखाता है हर एक चीज कैसा करना चाहिए। सर्विंग प्रसाद जो सेवा करते हैं वो भी एक तरीका है, ऐसा अलग फटाफट होना चाहिए ना काम, भला चलो निकलो यहां से मत खिलाओ यार। अगर आप किसी घर जाए अतिथि बैठो और अच्छा से सजा के डाल दिया और बोला चलो खाओ, ठीक समझ तो भूखी चला जाता है। तो एक सभ्य समाज का मतलब हर एक चीज
बैठना तरीका, बोलना एक तरीका, भगवान के सामने आना एक तरीका होता है, और जिस हद तक उसको अच्छे तरह से पालन करेंगे ना, सेटिस्फैक्शन मिलता है, हर एक चीज करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, तृप्त। आदमी को तृप्ति चाहिए। लोगों को लगता है खूब पैसा कमा लिया तृप्त हो जाएंगे, नहीं। सूक्ष्म तरीके से सोसाइटी मतलब सिविलाइजेशन, बोलने का तरीका। अरे बोलना तो है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चनानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, ये तपस्या है, वाणी की तपस्या। भगवदगीता में भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, जो भी हम बोलेंगे अनुद्वेग कर, उद्वेग नहीं होना चाहिए, किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बोलो वही बोलो पर कैसे बोलोगे? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रेम से बोलो। बोलने का तरीका होता है। एक चीज मैं महाभारत सीरियल में जब देखता था, बहुत अच्छा एक जगह, इतना एटिकेट, सभा में बैठा हुआ है राजा, बैठा हुआ है सारे मंत्री लोग बैठे हुए हैं, फिर एक उठता है सब बोलता है, बोलने के बाद वो बैठ जाता है, फिर दूसरा उठ के बोलता है, ऐसा नहीं कि बीच में माइक लेके फेंक देना। असेंबली में हम देखते हैं पशु, अरे वो बोल रहा है जो भी हाथ में आया, बाद में माइक को स्क्रू डाल के फिक्स कर दिए। असेंबली हाउस, दीज आर द लीडर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के नेता ये लोग। अंदर आने से पहले चेक करने का, कोई बंदूक बंदूक तो नहीं लाया सर पे, कोई गोला तो नहीं लाया फेंकने के लिए एक दूसरे के ऊपर। प्रभुपाद बोलते थे व्हाट इज दिस नॉनसेंस एजुकेशन, व्हाट इज दिस एजुकेशन, एजुकेशन मतलब सभ्यता, सभ्य आदमी। तुम पीएचडी एमएससी के एजुकेशन में चेकिंग कर रहा है, कोई कॉपी करने के लिए कुछ लाए तो नहीं है ना, ये डब्बा सब उसका चेकिंग हो रहा है, बोले क्या एजुकेशन है ये? Only sophisticated, polished, well-dressed, two-legged animals. दो पैर में चलते फिरते सजे धजे पशु। अभी कुत्ते को सूट पहना दो, सूट पहना दो और उसको आसन पे बैठा दो, पर हड्डी सामने फेंको, मुकुट लगा दो उसको, वैष्णव तिलक और कंठी माला लगा दो और बोलो आज हमारे से आप हमारे राजा हो, ठीक है, पर वो अगर हड्डी देखा तो उसका मूल प्रकृति बाहर आएगा। तो ऐसे एजुकेशन मतलब रिफाइनमेंट, एजुकेशन मतलब सभ्य, मतलब हर एक चीज, सिर्फ ऐसे एक्सटर्नल नहीं, सुपरफिशियल नहीं, कपड़े कुछ पहन लिए नहीं, व्यवहार में बदलना चाहिए। And civilized society means there is a way of doing it. ऐसा कोई समाज नहीं है जहां समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आने वाली है क्योंकि ये भौतिक संसार है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे और बोलेंगे इस हॉस्पिटल में मैं ऐसा एक नियम बनाऊंगा कि कोई बीमार नहीं रहेगा, वेरी गुड, मतलब बीमार होने को निकल जाने का वो बस, पर जब तक हॉस्पिटल में है बीमार लोग ही हॉस्पिटल में आएंगे। तो भौतिक संसार यानी समस्याएं आने वाली हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबके हृदय में है, वो आने वाला है, पर इस समस्याओं को आप कैसे उसको डील करते हो, क्या बोलते हैं, सुलझाते हो, वो एक तरीका होता है। दिस डिस्क्रिमिनेट्स ए वैष्णव सोसाइटी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोसाइटी। एक वैष्णव समाज और एक मामूली समाज में यही अंतर है। मामूली समाज में इट इज वेरी डेल्ट इन सच ए ग्रॉस वे, स्थूल रूप से पब्लिक के सामने खड़े होकर एक दूसरे को झगड़ा मुक्का मारते हुए सुलझता है प्रॉब्लम, पर इतने प्रॉब्लम का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पर एक सभ्य समाज का लक्षण ऐसा है, हाँ समस्याएं आने वाली है, भौतिक संसार है, मतलब हर एक के अंदर दोष है किसी न किसी तरह से आने वाले, पर उस दोषों को हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स, बट देर इज ए वे टू डू इट, देर इज एन एटिकेट, एक तरीका होता है। समस्याएं हैं, किस तरह से उसको सुलझाना है। तो लड़ाई है सुअलंकृतम, तैयार होके सब घोड़े हाथी सब तैयार है और एकदम सिल्क रेशम सब लगा के। अब बोलेंगे अरे ये सब फटने वाला है, ये सब लड़ाई में क्यों है सब? नहीं, लड़ना है तो स्टाइल, लिव इन स्टाइल डाई इन स्टाइल। सभ्य समाज में मतलब सब कुछ एकदम तरीका होता है, सही करना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में, ए रॉयल प्रोसेशन लाइक दैट ऑफ परीक्षित सराउंडेड बाय वेल डेकोरेटेड चैरियट्स कैवलरी एलिफेंट्स इन्फेंट्री एंड बैंड इज नॉट ओनली प्लीजिंग टू द आईज बट ऑल्सो ए साइन ऑफ सिविलाइजेशन दैट इज एस्थेटिक इवन ऑन द फाइटिंग फ्रंट। लड़ाई में भी तरीका। और फिर तो महाराज परीक्षित निकलते हैं, निकलने के बाद पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और दूसरे श्लोकों में वर्णन है, भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरून किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व केतुमाल भारत कुरुजांगल तथा का उत्तरी भाग किम पुरुष आदि को जीत लिया और उनके शासकों को भेंटे वसूल की। परीक्षित महाराज को महाराज युधिष्ठिर ने राजा बना दिया, पर फिर भी क्षत्रिय लोग ऐसे होते हैं, देखते हैं कि अभी वो राजा थोड़ा ढीला हो गया तो फिर से उठ जाते वो लोग, अपना राज्य बोले आज अभी कोई नहीं प्रवेश करेगा। तो नया जब राजा आता था उसको फिर से स्थापित करना पड़ता था कि मैं भी उतना ही शक्तिशाली हूं जो पहले था, तो वो निकलता था बोला आ जाओ चैलेंज करो, स्वीकार करो मुझे या फिर मेरे साथ लड़ाई लड़ो। तो महाराज परीक्षित जब निकले तो सब राज्यों से गुजरे और चैलेंज किए, बोले अगर तुम मेरे विरुद्ध मेरे क्या बोलते हैं सम्राट जो अधिपति को अधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो तो लड़ाई लड़ो, तुम अगर योग्य हो तो तुम बनो नहीं तो स्वीकार करो। तो सब राजा सब जगह से निकले और फिर तत्र तत्रोपशृण्वान स्वपूर्वेशां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्णमाहात्म्य सूचकम्। यहां बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब भी महाराज परीक्षित जैसे सम्राट सारे विश्व के दूसरे 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 राज्यों से गुजरे तो उस राज्यों में परीक्षित महाराज को किस तरह स्वागत किया वहां के राजाओं ने, वहां के लोगों ने और वहां के राजाओं ने। राजा जहां कहीं भी जाता उसे निरंतर अपने उस महान पूर्वजों का जो सभी भगवत भक्त थे यशोगान तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों का गाना गाथा सुनने को मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि प्रथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली, उदारतावश उनसे प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान हार तथा वस्त्र भेंट किए। महाराज परीक्षित पूरे अपनी सेनाओं के साथ ठाट बाट एकदम जहां भी प्रवेश करते वहां के लोग और वहां के राजा सब आकर उन्हें स्वागत करते। स्वागत करने के बाद पहले और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं कि वैदिक संस्कृति में एक महान व्यक्ति का स्वागत कैसा किया जाता है और आजकल के दुनिया में कोई जो राजनीति के पदवी पर जो है उसके स्वागत में और इनके स्वागत में क्या अंतर है। पहला कहते हैं कि पहले जमाने में वैदिक संस्कृति में राजा और कोई महात्मा या कोई भी राज्य का वरिष्ठ व्यक्ति जब कोई आता था तो बहुत ही बड़े तरीके से उनका स्वागत किया जाता था, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, वेरी उसका हिंदी अनुकूल, मतलब उनके योग्य तरीके से, उसकी योग्यता के अनुसार वो ये भी होता था, स्वागत भी होता था, उसका भी अलग अलग लेवल है। ये लेवल का व्यक्ति है तो उसका स्वागत में शायद घोड़े आएंगे, इससे भी महान आदमी है तो उसके उसके इसमें तो हाथी आएंगे। 17 गन सैल्यूट, 22 गन सैल्यूट। अगर कोई जनरल मरता है ना तो उस मिलिट्री में जनरल का आदमी उस पद पर मरा है तो उसको 21 गन सैल्यूट, 20 गन जो है धाड़ 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 बंदूक चलते, मतलब बहुत बड़ा आदमी। देर इज ए सिस्टम, उसमें भी तरीका है। तो हाथी घोड़े तो समझ जाने का, बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, चार लोग खड़े तो समझ जाने को थोड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। पर तो इस तरह से योग्य, उसकी योग्यता के अनुसार वो किया जाता था। पर आजकल की परिस्थिति क्या है, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि वो पद को स्वीकार किया है, योग्य व्यक्ति हो या अयोग्य व्यक्ति हो, उसको सम्मान देना ही पड़ता है। सबको मालूम है ये चोर आदमी है, पर फिर भी क्या करे, सलाम मारना पड़ता है, झंडा लगाना पड़ता है, तुतुरी बजाना पड़ता है। प्रेम से नहीं कर रहा है वो, खुशी से, अरे हृदय से आनी चाहिए ये स्वागत, हृदय से आनी चाहिए। हृदय से नहीं आता है तो दोनों को मालूम है, ये भी मालूम है चोर है और ये भी मालूम है बजा रहा है, पर सोच रहा है क्या है, इसको क्या बजाने का तो कोई भी व्यक्ति योग्य हो या अयोग्य हो, पर क्योंकि वो पदवी पर है इसीलिए सलाम मारना पड़ता है बस। और पहले वैदिक संस्कृति में गुणगान भी जब होता था तो कृष्ण के संबंध में था, इन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य, धार्मिक कार्य इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित नहीं है तो कोई योग्यता, मतलब गुणगान करने की योग्यता है ही नहीं कुछ, उसका गुणगान करके कोई फायदा नहीं, तो अंततः कृष्ण की शक्ति है। तो कृष्ण से संबंधित, तो जहां भी महाराज परीक्षित जाते थे लोग पांडवों का गुणगान करते थे, अरे इनके दादाजी कैसे थे, इनके पिता कैसे थे अभिमन्यु, अरे ये खुद कैसे, इनको बचाने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश, ऐसे महान व्यक्ति प्रणाम करें, हम इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनको हम स्वागत कर रहे हैं, इनको हम शरण जाने के लिए तैयार हैं, इनके नेतृत्व में हम शरण जाने मार्गदर्शन लेने के लिए हम तैयार हैं। हृदय से स्वागत करते थे और कृष्ण के संबंध में जो भी महान लक्षण है उसका गुणगान करते थे। पर आजकल के, इन्होंने इतना कत्तल खाना खोला, मैकडोनाल्ड को परमिशन भी दे दिया, कौन सा बड़ा काम किया, आसुरिक काम किया इसने, ये किया वो किया, बहुत ही, चाहे वो धार्मिक हो अधार्मिक हो किसको भी नहीं मालूम। यथांधई अंधा यथांधई उपनीयमाना तेपी, ये अंधे है और बड़ा अंधा है, ये भी अंधा है, ये बड़ा अंधा है। पर स्ववराह उष्ट्र खरे संसुत पुरुष पशु, छोटे छोटे पशु, बड़े पशु आता है ना, ये बड़ा पशु है, हम लोग चार खाते हैं तो ये 10 चिकन एक साथ खा लेता है, इसीलिए बड़ा पशु, ऐसा नहीं। तीसरा प्रभुपाद कहते हैं देवर फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा के कुछ बोल दिया, बस कुछ किया ही नहीं है, पर फिर भी 2 लाख दिया है तो बोलेगा 10 लाख दिया, नहीं, जो किया है वही चीज, दिस इज रियल ग्लोरिफिकेशन, नहीं तो वो भी एम्बेरस होता बेचारा, अरे मैंने किया नहीं, किसके बारे में बोल रहा है। एक बार मैं तो उसका जो एक्चुअल लक्षण है उसका गुणगान कर, ऐसा नहीं कि जो नहीं किया बड़ा चढ़ा के अपना भी खुद जोड़ दिया, उसको भी खुश, तू मेरा पीठ खोजला और तू मेरे को मेरा पीठ खोजला, ऐसा नहीं, जो योग्य है उतना ही, उतना जो किया है उतना ही बोलना। एक बार एक सन्यासी आए हुए थे और कुरुक्षेत्र में गए हुए थे वो, तो दूसरे व्यक्ति उनको, वो बड़े
बड़े इस पे क्या बोलते हैं असेंबली में, असेंबली मतलब बहुत बड़ा एक प्रोग्राम अरेंज किए थे, बड़े बड़े लोग आए थे। तो एक व्यक्ति ने इन महाराज जी का गुणगान, इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, पीएचडी किया, कुछ भी बता दिया, जबकि वो स्कूल के ड्रॉप आउट थे वो। तो ये सब होने के बाद महाराज जी उठे और बोले, इन्होंने दो चीज गलत कहा है, मैं स्कूल के बाद कॉलेज में कभी गया ही नहीं, शायद इनको गलत इंफॉर्मेशन मिल गया है। मैं पीएचडी नहीं हूं, ना मैं एमएससी किया हूं, मैं तो बस दसवीं के बाद आ गया, निकल गया था। और दो दो तीन चीज ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, उसको क्लियर किया और फिर अपना प्रवचन शुरू किया। तो देवर हां, और प्रभुपाद जी लिखते हैं, पर आज के दे आर नॉट ऑलवेज विथ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स बट प्लीज द पोस्ट होल्डर ऑफन फुल ऑफ फ्लैटरिंग लाइस। क्या बोलते हैं, मस्काबाजी, बस घुमा घुमा के, मतलब जो नहीं है वो भी खोलना, वो भी खुश और ये भी खुश, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इसको खुश किया तो इसको भी पदवी मिलेगा कुछ। तो चापलूसी एक दूसरे की। बस कन्नड़ में एक कहावत है, एक बार नीम और करेला साथ में आ गए और करेला नीम को बोलता है, तू कितना मीठा है, और नीम तो करेला को बोलता है, तू तो मेरे से कम है क्या, तू भी ज्यादा मीठा है, दोनों कड़वे हैं। तो इस तरह से आजकल के दुनिया में छोटा पशु बड़ा पशु को बोलता है और बड़ा पशु बोलता है, हाँ ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ही बोलते रहेंगे। और चौथा, प्रेजेंटर्स वर सफिशियंटली रिवॉर्डेड। यहां परीक्षित महाराज बोलते हैं, परीक्षित महाराज ने क्या किया, राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। इसका मतलब क्या, आंखें बंद करके घूम रहे थे परीक्षित महाराज? आंखें खोलना मतलब ध्यान देना। ओ, खुश हुआ, प्रसन्न हो गए, किसी को हम देखते हैं प्रसन्न हो गए, उसे प्रसन्न होकर देखा, इसका मतलब उसका जीवन सफल। एक करोड़पति जा रहा है और दस लोग भीख मांग रहे, भैया भैया साफ साफ सेठ सेठ सेठ, हजार लोग ऐसे सड़क पे खड़े हैं, करोड़पति आदमी है, पर उन हजारों भिखारियों में से एक भिखारी के ऊपर अगर वो देख लिया और खुश हो गया, अच्छा भीख मांग रहा है, बड़ी तीव्रता से मांग रहा है, शायद तेरे को जरूरी ज्यादा है, और बाय चांस वो करोड़पति अगर तृप्त होकर आंखें उस पर, आंखें तो सबको देख रहा है वो, पर आंखें खोल के देखना मतलब प्रसन्न हो जाना, ओ इसको मैं दूंगा, खत्म, उसकी गरीबी दूर हो गई, क्योंकि करोड़पति ने देख लिया उसको। हम भी देख रहे हैं, हम देख क्या, खुद भिखारी वो क्या भिखारी, दोनों एक भिखारी आंखें खोल के भी देखे कोई फायदा नहीं, पर एक करोड़पति अगर आंखें खोल के हमको देखे तो हमारा जीवन सफल। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण को देखने मत जाओ, ऐसी सेवा करो कि कृष्ण तुम्हें देखने चाहे। तुमको जब कृष्ण देखेंगे, वो देखेंगे कब, जब वो प्रसन्न होंगे। प्रसन्न कब होंगे, जब उनके दास दासानु दास बनोगे तुम। सब दासों के सर पर रख के मैं बॉस बन रहा हूं, देखो मेरे को, बोले छोड़, जो नीचे खड़ा उसको देखूंगा मैं, तो सबका सर दबा के ऊपर आके तू देखने जा रहा, मेरे को नहीं जाए, सामने है पर फिर देख रहे हैं फिर भी नहीं देखेंगे। पर जो अपने आप को पीछे रखता है, श्रीवास ठाकुर के घर में वो औरत थी दुखी, पीछे खड़ी थी, वो अपना सेवा कर रही थी पर प्रेम से कर रही थी, दास दासानुदास बनकर कर रही थी। महाप्रभु ने उसको बुलाया, श्रीवास ठाकुर को बुलाओ, बुखा बुलाओ उसको, किसी ने नहीं देखा पर भगवान ने उसको देखा और बोले तुम्हारा नाम क्या है, बोले दुखी, दुखी आज से तुम्हारा नाम सुखी। और देखे कैवल्य नरकाय थे दशपुर तुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रो विश्वम पूर्ण सुखाय थे विधि महेन्द्रादिश्य कीटाय थे यत कारुण्य कटाक्ष करुणा कटाक्ष। जब भगवान प्रसन्न होकर देखते हैं किसी को, इसका मतलब तुम्हारा जीवन सफल हो गया, प्रेम से भर दिया उनको दुखी के हृदय में। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो,
यस्य अप्रदादा न गति कुतोपि। प्रभुपाद के कितने शिष्य हैं, प्रभुपाद के गुजर कर 20-20, 30-30 साल हो गए, पर आज भी उनको एक ही दृश्य आज तक उनका भक्ति बनाए रखा है कि एक बार प्रभुपाद उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बहुत प्रसन्नतापूर्वक उनको देखे और बोले बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं कि तुमने यह सेवा की। तो एक शुद्ध भक्त जब देखता है कृपा पूर्वक करुणा कटाक्ष, तो भगवान की सारी जो भक्ति की शक्ति है वो उसके द्वारा प्रवेश करती है। तो देखना मतलब हमको सामने जाके खड़े होने से नहीं देखते, वो देखते तब है जब वो प्रसन्न होते हैं। देखते तो सबको है वो, पर देखना, जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते राधा कुंड में स्नान करना एक चीज है और राधा कुंड में स्नान करना दूसरा चीज है। बोले है क्या दोनों एक ही है? नहीं, राधा कुंड में स्नान करना एक चीज है और राधा कुंड में स्नान करना दूसरा चीज है। कोई भी स्नान करता है राधा कुंड में, भैंस को ले जाके वो भी स्नान करता है, आपको थोड़ा फायदा होगा ही, पर स्नान करना भावना, उस भावना जानते हुए पूरा महत्व। तो इस तरह से कृपा पूर्वक जब वो प्रसन्न हो गए, तो आजकल पहले जमाने में ये गुणगान करते थे, सूत मागद वंदिनः, सूत मागद ऐसे लोग होते थे, प्रोफेशनल लोग, पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसके राजा के परदादा के दादा, पूरा परिवार जो है राजाओं के, मागद वंदिनः सूत, ऐसे लोग होते थे, पूरा हिस्ट्री ऐसा सुनाते थे। जब प्रसन्न हो जाते थे राजा, तो उसको प्रसन्न से अगर आंखें खोल के देख लिया, इसका मतलब उसको बहुत सारा दक्षिणा, बहुत सारा, उसका पूरा परिवार सुख। पर आज रेयरली रिवॉर्ड बाय द पुअर रिसीवर्स, वो खुद ही भिखारी है, वो क्या तुमको देगा, वो खुद ही किसी और के पीछे पड़ा हुआ है, उससे खींचने में लगा हुआ है, तो वो हमको क्या देगा। तो ये अंतर है। परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए जो गुणगान हो रहा था, योग्य व्यक्ति और योग्य उद्देश्य से कर रहे थे और योग्य तरीके से कर रहे थे। व्यक्ति योग्य था, गुणगान करने वाले योग्य थे और योग्य तरीके से कर रहे थे, और इसीलिए उसका आदान प्रदान भी योग्य तरीके से परीक्षित महाराज ने किया। पर यहां अयोग्य व्यक्ति, करने वाले भी अयोग्य, उनकी कोई योजना भी नहीं, उनको 10 रुपया दिया तो आके ताली बजाने के लिए बैठते हो, उसको भी बोले सिर्फ बताओ कब ताली बजाने का, बस जल्दी 10 रुपया दो मैं जाऊंगा, तो वो योग्य तरीके से गुणगान क्या करेगा वो, और ये योग्य थे क्या देगा क्या है? खुद भी भिखारी है, खुद तो चूसने आया, कितना ले सकता हूं मैं यहां से। तो इस तरीके से क्या जमीन आसमान का अंतर है ऐसी संस्कृति और आज के दुनिया में। तो यहां हम समाप्त करेंगे, आज 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 के श्लोक में आए ही नहीं एक्चुअली। इसके बाद ये नेक्स्ट श्लोक है, अगला श्लोक यही है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार बोल रहे हैं कि आप कितने महान हो, आप लोग, आपके परिवार के दादा परदादा कितने महान थे कि भगवान खुद आपके दादाजी यानी जो पांडव हैं उनके लिए क्या क्या पदवी नहीं स्वीकार किए, सर्वस्व थे आपके लिए, सर्वस्व थे भगवान, आपके सारथी बने, क्या क्या नहीं बने, भगवान श्री कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के सर्वस्व हैं, वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है थे। विश्वास कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पूरे ब्रह्मांड के नायक, किसी एक व्यक्ति के दूत बनना, सारथी बनना, पथ प्रदर्शक बनना, वैयक्तिक रूप से मार्गदर्शन करना, हमेशा खड़ा रहना, उनके घोड़ों को साफ करना, पानी पिलाना उनके घोड़ों को, क्यों क्यों ये सब काम किए भगवान ने ऐसे भक्तों के? क्योंकि भक्त लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। भक्त के लिए भगवान सर्वस्व है और इसीलिए भगवान ये यथावाम प्रपद्यंते तान सदैव भजाम्यहम्। सती कुंती महारानी का जब प्रार्थना होता है तो कुंती महारानी की प्रार्थना की पहला श्लोक, उसका एक पहला श्लोक वहां कहते हैं सती, कुंती महारानी को सती, सती यानी चेष्ट, चेष्ट चेष्टिटी को क्या बोलते हैं, पतिव्रता जो बोलते हैं ना, पातिव्रत्य। तो भक्त एक पातिव्रत्य, पति कौन है, अल्टीमेटली तो कृष्ण सबके पति हैं, सात्वताम पति। तो हम किसी और की ओर नहीं देखेंगे, सिर्फ हमारे पति, यही हमारे सर्वस्व हैं, और किसी का आश्रय नहीं लेंगे और किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे, यही हमारे सब कुछ है। पूर्ण रूप से कुछ भी करने के लिए तैयार थे और इसीलिए भगवान भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एक बार प्रभुपाद जी बातचीत हो रहा था भक्तों के साथ, तो एक रिपोर्टर देख रहा था, एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूं कि ये लोग जो लोग हिप्पी लोग थे, जो अपने मां बाप को भी छोड़ के आ गए हैं, जो लोग 30 उम्र से कोई बड़ा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, ये लोग इंडिपेंडेंट टोटली मतलब रिबेलियस, ऐसे लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है आपके लिए। आप बोलते हो सीधा जाके वहां प्रचार करो बिना पैसा के, तो जाने के लिए तैयार है। आपने क्या जादू किया इन पर, ऐसा क्या जादू किया कि आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्रभुपाद जी ने बड़े नम्रतापूर्वक सत्य जो है बताया, बोले ये मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है क्योंकि मैं इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अब प्रभुपाद जी ने दिखाया, दो हार्ट अटैक, उनके लिए उन्होंने वृंदावन को त्याग दिया, ब्रजवास उसको त्याग दिया, 40 रुपया लेकर इतनी गरीबी, इतना तकलीफ, हार्ट अटैक, क्या क्या समस्या झेले सिर्फ इन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए तकलीफ उठा रहे थे। और क्योंकि वो इतना तकलीफ उठा रहे थे, इतना बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, हम लोग 9 घंटे का एक फ्लाइट लेके इधर आते हैं, 3 दिन लगता है वो जेट लैग जाने के लिए, दिन है कि रात है समझता नहीं, कभी भी नींद आता है, कभी भी भूख लगता है, 9 घंटे का फ्लाइट ले लिया खास करके लंदन से इधर, 3 दिन समझ में नहीं आता ठीक से, सोते सोते जाते जाते सोते कुछ भी, रिकवर होने के लिए जेट लैग। और प्रभुपाद जहां भी जाते थे उनके सेवक हरिशौरी प्रभु और सुतकीर्ति प्रभु लिखते हैं, बोले प्रभुपाद हैड नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक जेट लैग फॉर हिम। दोपहर को 2 बजे निकले, 9 घंटे का फ्लाइट, तो दोपहर को 2 बजे निकले और वहां पहुंचे, वहां 5.5 घंटे का फर्क है, तो वहां हो गया 4 बजे, दोपहर का 4 बजे, और तुम 2 बजे निकले हो, 9 घंटे मतलब 2 और 9 कितना हो गया, रात का तुम्हारा 10 बज गया, तो तुम्हारा जो बायोलॉजिकल घड़ी है वो बोला छोड़ जाओ, और उनका 4 बजा है अभी, वो लोग सब उत्साहपूर्वक, फिर ठीक है वहां का पूरा शेड्यूल, रात को वहां सोते थे फिर अगले दिन उठना, तो बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कब खाना है कब, समझता नहीं है वो शरीर को, ये तो खोने का टाइम है खिला रहा है तुम, खाने का टाइम है सो रहा है तुम। और जो व्यक्ति हमेशा चलता रहता इधर से उधर, इधर से उधर, कभी 4 घंटा पीछे कभी 4 घंटा आगे, पर इसके बावजूद भी प्रभुपाद जहां भी थे वो समय के अनुसार उनका शेड्यूल चलता रहता, दिस शोज दैट ही वाज एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल। समय निमेशाभाख्यो वावृजते नहीं यत्रापि, सब ऐसा ही प्रैक्टिकल रूप से। तो इस तरह से कुछ भी, इतना तपस्या देख रहे, और इसके लिए वो लोग भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो क्योंकि पांडव पूर्ण रूप से शरणागत थे, सर्वस्व भगवान उनके लिए सर्वस्व थे, और इसीलिए आदान प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान पांडवों के लिए सर्वस्व बनने के लिए तैयार थे। किसी तरह से सेवा, राजा के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं, गुरु के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं, पर यह सारा सेवा का सार यही है, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं। और आप चाहे जैसे सुदामा सुदामा जब द्वारका गए तो भगवान उनके चरण धो रहे थे। क्या सुदामा को नहीं मालूम भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो क्यों उन्होंने भगवान को अपना चरण धोने को दिया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि भगवान मेरे द्वारा शायद दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण की कैसा सेवा करना है राजा को। ठीक है, मैं तो मेरा सेवा क्या है, जो पैर हो रहे हैं वो उसे स्वीकार करना, बस उनको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं उनका सेवक हूं। वो चाहते हैं कि सर पे मारो, मारने के लिए तैयार हूं। जैसे पुराने जमाने में राजा लोग कुश्ती लड़ने के लिए कुश्ती को पहलवान को रखते थे, और पहलवान का काम था मारना पकड़ के राजा को, पैसा लेता काम है मारना, और लड़ना चाहिए सही तरीके से लड़ना चाहिए, नहीं तो वो लड़ेगा कैसा राजा? अरे नहीं, पहले आप अरे लड़ो, कुश्ती वाला लड़ना चाहिए। ठीक है, आप लड़ना चाहते हो तो आपसे लड़ूंगा मैं। भीष्म पितामह लड़ने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से पांडवों के लिए भगवान सर्वस्व थे, और इसीलिए भगवान पांडवों के लिए सर्वस्व हो गए। कुछ भी सेवा, दूध बनना चाहते हो मैं दूध बनूंगा आपका, आपका घोड़ा चलाना मैं घोड़ा चलाऊंगा, आपके राजसु यज्ञ में चप्पल स्टैंड का केरा, ठीक है मैं सबका पैर धोऊंगा और सबका चप्पल निकाल के वहां रखूंगा। कुछ भी बनने के लिए तैयार, ये प्रेम का लक्षण, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम ऐसा चीज है जो भगवान को खरीद लेता है, इसीलिए प्रेम सबसे बड़ा धन है, प्रेमापमार्थो महान। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ये प्रेम के लिए, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, प्रेम ऐसा चीज है जो बिक जाता है आदमी प्रेम के पीछे, सच्चा प्रेम, दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम। और वो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं हरि नाम के द्वारा। दो चीज महाप्रभु ने बोला, बोले हरि नाम लो और वैष्णवों की सेवा करो, बस हरि नाम और वैष्णव सेवा, ये दो जो चीज है करते रहो तो ये प्रेम मिल जाएगा। ऐसा दुर्लभ चीज बड़े सरल तरीके से महाप्रभु ने दिया है, और भागवत के द्वारा हम समझते हैं किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ताय गौर प्रेमानंदी। मैं सॉरी बोलना छोड़ दिया क्योंकि हर रोज थोड़ा लेट हो रहा है। बोलूंगा तो बोलेंगे सिर्फ नाम के वास्ते। कुंजर शौचवत्।